मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए अब अंततः अपन आस्था पर बात करते हैं। शुरुआत हालांकि आस्था से ही हुई थी, लेकिन फिर जब आप लोगों के प्रश्न आने लगे तो मैंने उसके जो अलग अलग एंगल हो सकते थे, यानी कि ऐसे कोण हो सकते थे जो आपके मन में इसके लिए भ्रम पैदा कर सकते हैं, उन विषयों पर बात करके निवारण करने की कोशिश की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि डेफिनेटली इन सारी बातों से आपकी जो दृष्टि है, खासकर आस्था को लेकर, वो कहीं ना कहीं पहले की तुलना में ज़्यादा स्पष्ट हो गई होगी। आज मैं शुद्ध रूप से आस्था पर आप सबसे बातें कर रहा हूँ। अपनी बात की शुरुआत में एक छोटे से प्रश्न से करूँगा। आप अपने जीवन के उस घड़ी को याद करें जब आपको कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा लगता था जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन खत्म नहीं हुआ, रास्ता भी दिखा, अंधेरा भी छटा। तो बस आप केवल टटोलने की कोशिश कीजिए, गहरे उतरने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सी चीज थी, कौन सी ताकत थी, वो कौन सा तत्व था, वो कौन सा सहारा था जिसने आपको उन कठिन क्षणों में सहारा दिया। वो कौन से अदृश्य हाथ थे जो आपकी पीठ पर मौजूद थे, याद करने की कोशिश कीजिए। वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंदर एक ऐसी बात थी, एक ऐसा संबल था जिसने उस समय आपको टूटने से, गिरने से बचाया होगा। और अगर गिर भी गए होंगे तो फिर आपका हाथ पकड़कर आपको उठाया भी होगा। आप प्लीज ये न कहें कि नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसे कोई क्षण नहीं आए हैं। जिंदगी में आए ही होंगे, बस आपको थोड़ा उन्हें याद करके और उसके गहरे उतरने की कोशिश करनी होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप इसे थोड़ा सा वक्त दे सकेंगे इस रूप में, तो आस्था पर आपका विश्वास और गहरा होता चला जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में आस्था होती क्या है। मैं इसकी परिभाषा देने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे तो बस ये लगता है कि बस आस्था होती है, बस खत्म हो गई बात। इसमें कोई लेन देन नहीं होता, इसमें कोई लाभ और हानि नहीं होता, इसकी कोई कसौटी नहीं है जिस पर आप कस कर और इसका परीक्षण करें कि हाँ, जो मेरी आस्था है वो सही है या गलत है। मैंने कहा लेन देन नहीं होता, इसका मतलब यह है कि मैं जिस पर आस्था कर रहा हूं वह मेरे आस्था के अनुकूल आचरण कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ईश्वर में पर आस्था है, मान लीजिए कि मेरी ईश्वर पर आस्था है और मैं ईश्वर से कुछ मांग रहा हूं, मैं किसी संकट में फंसा हुआ और वो मैं कहता हूं ईश्वर से, मैं प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, मुझे इस संकट से निकालो, और मेरा संकट बढ़ता ही चला जाता है। तो अब मैं क्या करूं, क्या मैं अपनी आस्था को खत्म कर दूं? नहीं नहीं, यह सब बेकार की बात है, या अपनी आस्था को बनाए रखूं। दोस्तों, इसके बारे में मैं आप सबसे चाहूंगा कि अहिल्या बाई का जो जीवन है, प्लीज उसे थोड़ा सा पढ़ें। अहिल्या बाई का जीवन, आप सब जानते हैं कि भगवान शिव पर उनकी बहुत गहरी आस्था थी, बचपन से ही आस्था थी। बात बात में वो उन्हें स्मरण करती थी, और जब भी उनके सामने कोई संकट उठ खड़ा होता था तो हमेशा उसका जो समाधान है वो शिव से ही पूछती थी। लेकिन उनके आप जीवन को देखिए, उनके जीवन को देखिए, 30 वर्ष की उम्र में वो विधवा हो जाती हैं। फिर उनके ससुर की, जो मल्हारा होलकर हैं, जो शासक हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। 20-22 वर्ष की उम्र में वो अपने एकमात्र इकलौते बेटे को खो देते हैं। इसके बाद उनकी एक बेटी है, उन बेटी के जो पति हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और जब उनके दामाद की मृत्यु हो जाती है तो लाख मना करने के बावजूद बेटी नहीं मानती और बेटी सती हो जाती है और अहिल्या बाई अकेली रह जाती हैं। लगातार संकट 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 संकट। लेकिन शिव के प्रति उनकी आस्था जरा भी कम नहीं हुई, रत्ती भर भी कम नहीं हुई। शुरू से लेकर के अंत तक शिव के प्रति उनकी आस्था बनी रही। इसीलिए मैंने कहा कि जो आस्था है वो बस आस्था ही होती है। अगर आप उसे कसौटी पर कसकर जानने की कोशिश करेंगे तो फिर वो कोई दूसरी चीज हो जाएगी। ये कुछ मांगती नहीं है, ये कुछ देती भी नहीं है। जो कुछ भी होना होता है वो अपने आप हो जाता है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ऐसा होता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा हूं कि ऐसा होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसका ज्ञान मेरे पास नहीं है, क्योंकि यह तो फिर तर्क की बात हो गई। और अगर जब मैं तर्क के ऊपर सोचता हूं, देखिए तर्क की जो सीमा होती है इस पर हम लोगों ने बातें की हैं, कुछ ऐसी विचित्र सी चीज होती है कि आप कुछ बता ही नहीं सकते कि अब यह कैसे काम कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स जिसे हम कहते हैं अब इन्हीं खोज में लगा हुआ है कि कैसे हमें यहां कोई अनुभूति हो रही है और हमारे जो प्रिय 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं उनको भी वही अनुभूति हो जाती है, दोनों एक जैसा सोच रहे हैं। कैसे पता लग जाता है बहुत सी चीजों के बारे में कि यह होने जा रहा है, यह क्वांटम फिजिक्स है। यह मुझे लगता है कि आस्था की दुनिया की बात है। मुझे मालूम है कि हमारे गांव में एक शुक्ला जी थे जो कंपाउंडर थे, बेसिकली वो थे कंपाउंडर, लेकिन हमेशा गांव के लोग हरदम कहते रहते थे कि इनके हाथ में बहुत जस है और वास्तव में बड़ी बड़ी बीमारियों को भी वो सामान्य दवाइयों से ठीक कर देते थे। ये जो हाथ में जस है, हम कहते हैं अक्सर बोलचाल में कि उसके हाथ में जस है, तो ये हाथ में जस है क्या है? किसी महिला के लिए हम कहते हैं वो तो बिल्कुल अन्नपूर्णा देवी है, यानी कि घर में चाहे कितने भी लोग आ जाए अचानक भोजन करने के लिए वो सबका पेट भर देती है, सबको भोजन परोस देती है। ये क्या है मुझे नहीं मालूम। अभी फिलहाल मैं केवल इतना कह सकता हूं अपने सीमित ज्ञान के आधार पर और सीमित अनुभव के आधार पर कि मेरे लिए यह आस्था है। आप अपने लिए अपनी परिभाषा तैयार कर ले दोस्तों, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, यह जीने के लिए बहुत बड़ा सहारा है। जो व्यक्ति आस्थाओं में नहीं जीते हैं, मैंने उनके जीवन को बहुत बेहतर रूप में नहीं पाया है, क्योंकि मैं परीक्षण करता रहता हूं, मैं ऑब्जर्वेशन करता रहता हूं। तो प्लीज इसे समझें और मुझे लगता है कि अपने अंदर लाने की कोशिश करें। जीवन जितना भी आर्थिक रूप से संकटमय हो या और भी दूसरे कारणों से संकटमय हो, लेकिन ये मान करके चलिए कि अगर आपके अंदर आस्था है तो उसका जो चिकनापन है, उसका जो स्नेह है जीवन के प्रति, वह बना रहेगा। तो दोस्तों बस इतना ही, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।